हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब ये सब देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भी भड़क गया था। वो अपने सिर पर हाथ रखकर उसे कसने लगा था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि झलक ने उसके गुस्से को कितनी ज्यादा हवा दे दी थी। और तभी अचानक उसने झलक की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। झलक की सांस लगभग रुकने लगी थी, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसका दम घुटने लगा था। लेकिन तभी सिद्धार्थ खुराना फिर से उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके कानों में एकदम गर्म आवाज में बोला था, मैं जानता हूं कि तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और तुम यहां से चली जाओ। उसके बाद तुम आर्यन से शादी कर लोगी या फिर किसी और अमीर आदमी को फंसा लोगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरी दादी के बर्थडे वाले दिन जो ड्रामा किया था उसे मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सजा इतनी आसानी से माफ हो जाएगी? नहीं, तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। तुम्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा और मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूं कि तुम पछताओगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। फिलहाल तो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें कूड़ा समझकर तुम्हारे माँ बाप ने फेंक दिया, और जिन्होंने तुम्हें पाला उन्होंने भी तुम्हें जंगली की तरह पाला। उन्होंने भी तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए। सही मायने में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो पूरी तरह से तुम्हें पालने वाले उन माता पिता की है। याद रखना, अगर तुमने पार्टी में किसी भी तरह का कोई जंगलीपन किया तो याद रखना, मैं गोली तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे उन जंगली माँ बाप को ही मारूंगा। समझ गई ना तुम? ये बोलकर सिद्धार्थ अपने कंधे झटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। वहीं झलक तो बिल्कुल फ्रिज की तरह जम गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ एक बार फिर उसके माँ बाप को मारने की धमकी दे गया। वो गुस्से से पूरी तरह चिल्ला पड़ी और अपने बालों को दोनों हाथों से नोच लिया। उसके अंदर इतना सारा इतना कुछ भर गया था कि वो संभाल ही नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि काश थोड़ी बहुत बियर वगैरह पी ली जाए और अपने आप को शांत किया जाए। कुछ सोचकर उसने आर्यन को फोन मिला दिया था। वहीं आर्यन, जो अपने ऑफिस में मौजूद उदास सा खड़ा हुआ था, झलक का फोन आते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। तब झलक ने जल्दी से कहा था, आर्यन, मेरा दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर चुका है। अगर तुम मेरे वाकई अच्छे और पक्के दोस्त हो तो प्लीज मेरे पास आ जाओ, और हाँ, आते वक्त बियर भी लेकर आना। इस वक्त मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है। झलक की इस तरह की बातें सुनकर आर्यन हैरान हो गया था और वो तुरंत बोला था, क्या बात है, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मुझे कितनी पसंद हो। अब जैसे ही आर्यन इस तरह की बातें करने लगा, झलक पूरी तरह से इरिटेट हो गई। उसने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा, शट अप, एक तो मैं तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए कॉल कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ा रहे हो। अरे भाई, मैं तुमसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी ये प्यार प्यार का नाटक क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, मुझे तो इस प्यार नाम से ही नफरत है। मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में कभी किसी से प्यार होगा ही नहीं, तो तुम लोगों ने क्या सोच रखा है? देखो आर्यन, अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दिमाग में किसी तरह की कोई गलत फहमी पालो, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैं सिद्धार्थ खुराना से अलग भी हो गई तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त और भाई का दर्जा दिया है। समझ गई ना मेरी बात? और अब बियर लेकर भी मत आना, क्योंकि मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आई जस्ट हेट दिस। ये बोलकर झलक ने अपना फोन पटक दिया था और सोचने लगी थी कि आखिर उसकी जिंदगी में किस किस तरह के लोग भरे हुए हैं। कोई प्यार प्यार कहकर उसके आगे पीछे घूम रहा है, और एक है जो नफरत की सारी हदें ही पार करता जा रहा है। झलक ये सब सोचते हुए पूरी तरह से टूट सी गई थी। फिलहाल जल्दी ही दादी ने बहुत ही बड़ी ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था। ये पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं थी, बल्कि खुराना मेंशन के बड़े से लॉन में की जा रही थी। शाम की पार्टी थी और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब अनामिका भी जल्दी ही दादी के कहने पर झलक की हेल्प करने के लिए उसके पास आ गई थी। झलक ने सारा दिन अकेले कमरे में बिताया था। कभी कुछ सोचती रही, कभी रोती रही, कभी सोती रही, बहुत कुछ मन में चलता रहा। फिलहाल अब वो अनामिका के साथ तैयार होने लगी थी। अनामिका ने खुद झलक को बहुत अच्छे से तैयार किया। झलक बस यही दुआ कर रही थी कि आज का दिन किसी तरह निकल जाए, आज की ये रात कट जाए, उसके बाद वो यहां से निकलने की कोशिश करेगी। और वैसे भी सिद्धार्थ ने उसे डराते हुए साफ साफ कहा था कि अगर इस पार्टी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो शायद वो उसके माँ बाप को ही गोली मार देगा। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं था। ये सब सोचकर झलक अच्छे से तैयार हो गई थी। जैसे ही अनामिका ने झलक को पूरी तरह से तैयार किया, उसकी खूबसूरती देखकर अनामिका की आंखों में चमक आ गई थी। वो झलक की ओर देखकर बोली थी, सच बताऊं झलक, मैं खुद भी एक लड़की हूं और खुद को खूबसूरत भी मानती हूं, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देखकर सच में बहुत ज्यादा जेल्स फील होता है। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? और तुम जानती हो, तुम्हारी ये आंखें, इन आंखों में कुछ ऐसा है कि दिल बस इन्हें देखता ही रह जाए। सच में तुम्हारी आंखों से तो मुझे प्यार हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये आंखें पहले भी कहीं देखी हों। ये बोलते हुए अनामिका ने इमोशनल होकर झलक को गले से लगा लिया था।
अनामिका का प्यार भरा अंदाज कहीं ना कहीं झलक की आंखें नम कर गया था। फिलहाल झलक और अनामिका दोनों ही अब पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। उनके तैयार होने के बाद ही थोड़ी देर में दादी कमरे में आई थी और झलक को इस तरह तैयार देखकर कहीं ना कहीं काफी इमोशनल हो गई थी। उन्होंने झलक को गले से लगा लिया था और अचानक दादी ने अपने दोनों हाथ झलक के सामने जोड़ दिए थे। अब झलक थोड़ा सा हैरानी से भर गई थी और दादी को देखने लगी थी। वो बोली थी, दादी आप क्या कर रही हैं? आप इस तरीके से मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? क्या हुआ दादी, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? बताइए ना दादी। तभी दादी ने नम आंखों के साथ झलक से कहा था, मेरे बच्चे मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इस तरह की पार्टी अटेंड करने का या पूरे समाज के सामने किसी तरह का कोई दिखावा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे मेरी खुशी के लिए तुम तैयार हुई हो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस आज तुम्हें मेरी इज्जत रखनी होगी। मेरे जन्मदिन की पार्टी वाले दिन खुराना परिवार की जो बेइज्जती हुई थी उसे रिकवर करने का वक्त आ चुका है। उन सब बातों पर विराम लगाने के लिए, सब अफवाहों को बंद करने के लिए हमने ये बढ़िया सा रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया है और जानबूझकर हमने इसे अपने ही घर पर रखा है ताकि यहाँ सिर्फ हमारे भरोसेमंद लोग ही आ सके और हमारे साथ काम करने वाले भरोसेमंद लोग ही यहाँ मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह की कोई गलती या चूक की गुंजाइश ना रहे। मेरे बच्चे तुम सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। बस मेरी तुमसे आज एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम बेहद सभ्य तरीके से सबके सामने पेश आना। अब हम अपने दिल पर किसी तरह की और चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
अब जैसे ही दादी ने ये कहा, झलक आगे बढ़ी और तुरंत दादी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसने दादी को गले से लगाकर कहा था, दादी प्लीज अब तो मेरी हिम्मत बनिए और आप जानती हैं सिर्फ आपके लिए ही तो मैं ये सब कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करूँ, बल्कि मैं एक तरफ ही बैठी रहूँगी, किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करूँगी और जैसा आपने मुझे बताया है उसी तरीके से सबको हाय हेलो करूँगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से पेश होंगी। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मेनिया।